दिन भर तारीख 17 जून दिन सोमवार, मैं हूँ मानसी दास। बिहार में भीषण गर्मी ने ढाया कहर, गया में लागू की गई धारा 144।
किसी भी तरह का बड़ा पब्लिक प्रोग्राम या जन समागम का प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो ओपन में होता है, तो उसको भी 11 से 4 के बीच में नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद आज खत्म हो सकती है डॉक्टरों की हड़ताल।
जो प्रतिनिधिमंडल आया था जूनियर डॉक्टरों का, उन्होंने कहा कि वे इस बारे में औपचारिक ऐलान करेंगे, लेकिन माना जाता है कि इसमें सहमति बन गई है, देर रात तक आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया जाएगा।
और खास रिपोर्ट, बूंद बूंद पानी को तरसते बुंदेलखंड की।
पूरी दोपहरी न रात न दिन पानी महने न सो पाए न कुछ कह पाए।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अस्पतालों में डॉक्टरों की बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में हजारों डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इस हड़ताल का असर देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिला। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में देशव्यापी 24 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया था। इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल से हुई थी, जब 3 डॉक्टरों पर एक परिवार ने हमला कर दिया था। इस परिवार के एक सदस्य की अस्पताल में मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल के डॉक्टरों पर हमला कर दिया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग है कि देश भर के डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाएं और जो लोग डॉक्टरों पर हमला करें उनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए। इस मामले को लेकर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और डॉक्टरों के बीच एक मीटिंग भी हुई, लेकिन मीटिंग में क्या तय हुआ है अभी तक इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार या मस्तिष्क ज्वर के साथ साथ एक्यूट इंसेफिलाइटिस सिंड्रोम की वजह से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 93 के पार हो गया है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एनएचआरसी ने प्रमुख सचिव, बिहार सरकार और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक स्वतंत्र पत्रकार और ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल खान पर कुछ लोगों ने हमला किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि 22 वर्षीय बिलाल को एक फ़ोन आया था, जिसके बाद वो घर से बाहर निकल आए और उसके बाद लोगों ने उन्हें पकड़कर जंगल में जाकर उनकी हत्या कर दी। बिलाल एक स्वतंत्र पत्रकार थे और उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी था, जिसके करीब 50,000 सब्सक्राइबर भी हैं। सोशल मीडिया पर बिलाल के लिए लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के संस्थापक रेन झेंगफेई ने कहा है कि उनकी कंपनी का राजस्व इस साल करीब 100 अरब डॉलर कम हो जाएगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि हुआवे कंपनी सुरक्षा के लिए खतरा है और ऐसा कहते हुए उसने अमेरिकी कंपनियों से इसके साथ व्यापार करने पर रोक लगा दी है। रेन ने कहा कि उन्हें अमेरिका से कभी भी इस तरह की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अमेरिका हमसे लड़ने के लिए इस हद तक जाएगा, वो इतने स्तर पर काम करेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये थे हुआवे के संस्थापक रेन के शब्द। ईरान ने कहा है कि वो इस महीने के अंत तक साल 2015 में हुए एक परमाणु समझौते को तोड़ देगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता का कहना है कि 27 जून तक देश के पास यूरेनियम का भंडारण 300 किलोग्राम की अनुमत सीमा से अधिक होगा। राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पहले ही चेतावनी देते हुए कहा था कि उनका देश अब इन प्रतिबंधों को मानना छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका ने संधि तोड़ दी है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बहरोज ने बताया, आज से यूरेनियम के समृद्ध भंडारण के 300 किलोग्राम की अनुमत सीमा पार करने की उल्टी गिनती शुरू होती है और आने वाले 10 दिनों के भीतर हम इसे पार कर जाएंगे। ये थे प्रवक्ता बहरोज के शब्द। कीनिया के दक्षिण पश्चिम इलाके में मौजूद स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि वे एक ऐसी महिला का इलाज कर रहे हैं जिसे नकसीर का बुखार होने की आशंका है। ये महिला युगांडा से लौटी है और उसमें इस बुखार के सभी शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बिहार से, जहां अब तक भीषण गर्मी और लू लगने के कारण 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और करीब इतनी ही संख्या में लोगों का इलाज भी चल रहा है। चढ़ते पारे और लू के कारण बिहार शिक्षा विभाग ने आज प्रदेश के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को जून 22 तारीख तक बंद रखने का आदेश दिया है। लू के कारण सबसे अधिक 35 से मौतें केवल गया जिले में हुई हैं। यहां धूप में लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। पूरी रिपोर्ट हमारी सहयोगी मनीष शांडिल्य से।
बिहार में एक तरफ जहां दिमागी बुखार से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही है, तो दूसरी ओर दर्जनों लोग लू और भीषण गर्मी का शिकार हो रहे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक सूबे में लू लगने से शनिवार और रविवार को 79 लोगों की जान गई। वहीं स्थानीय मीडिया के मुताबिक केवल रविवार को ही 100 से ज्यादा लोग लू के शिकार हो गए। भीषण गर्मी को देखते हुए एक ओर शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को 22 जून तक के लिए बंद कर दिया है, तो वहीं गया जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। गया जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने बीबीसी को बताया कि धारा 144 के तहत किन किन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।
मैं तीन चीजें हैं। पहला है कि दिन में 11 से 4 के बीच में किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं हो जिसमें वर्कर्स को लगना पड़ता है, और दूसरा उसके मनरेगा का जो भी कार्य है वो 10:30 तक कम्प्लीट हो जाए, 10:30 बजे के बाद कोई कार्य नहीं होगा, और तीसरा किसी भी तरह का बड़ा पब्लिक प्रोग्राम या जन समागम का प्रोग्राम या सांस्कृतिक कार्यक्रम जो ओपन में होता है, खुले आकाश के नीचे होता है, उसको भी 11 से 4 के बीच में नहीं किया जाएगा।
पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक सूबे में आज तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, मगर लू जैसी स्थिति अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। केंद्र के प्रभारी निदेशक आनंद शंकर ने बताया,
आज थोड़ी क्लाउडी स्काई होने के कारण तापमान में थोड़ी सी गिरावट हुई है, लेकिन अभी भी कल और परसों ये 3 दिन हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल रहेगा बिहार में फ्यू प्लेसेस पे। मेनली जो हमारा नॉर्थ वेस्ट रीजन हो गया, साउथ वेस्ट, साउथ सेंट्रल और साउथ ईस्ट रीजन तक ये कंडीशन बनी रहेगी, और 2021 को आशा है कि अच्छी वर्षा हो सकती है, तो उसके बाद से सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। ये अगले 5 डेज का फोरकास्ट देखे तो ऐसी बिहार में स्थिति बन रही है।
पटना में कल उच्चतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया था, मगर आज इसके 2 से 2.5 डिग्री तक कम रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक लू से सबसे ज्यादा प्रभावित गया और औरंगाबाद जिलों में भी आज तापमान में इसके आसपास ही गिरावट दर्ज होगी। मनीष शांडिल्य, बीबीसी पटना।
इन दिनों भीषण गर्मी और पानी की भारी किल्लत से उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड इलाका भी जूझ रहा है। इस पर सुनवाएंगे खास रिपोर्ट थोड़ी देर में, लेकिन अब बात बिहार के ही मुजफ्फरपुर जिले की, जो आजकल बच्चों की मौत के कारण चर्चा में है। यहां दिमागी बुखार यानी एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या 104 तक पहुंच गई है। दिमागी बुखार को यहां चमकी बुखार भी कहा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले प्रदेश सरकार ने दिमागी बुखार के मरीजों का इलाज मुफ्त में करने की घोषणा की है। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है। कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया था। इस मुद्दे पर आज उन्होंने दिल्ली में संसद भवन के बाहर क्या कहा, सुनिए।
हेल्थ मिनिस्ट्री ने पूरा उसके लिए प्रोटोकॉल जो होना चाहिए वो जारी किया है। हम लोग भारत सरकार से जो भी सहयोग बिहार सरकार को चाहिए वो सहयोग हम लोग करें, वहाँ के मंत्री से, वहाँ के सब लोगों से हम लोग लगातार संपर्क जारी है हमारा। और आप जानते हैं कि वो बीमारी AIS जो है, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी हासिल नहीं हुआ। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ शोध का भी एक घोषणा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने वहाँ किया है कि एक शोध का वहाँ हो, साथ साथ जो हमारे वहाँ बच्चों के लिए एक अच्छा ICU का वो निर्माण के लिए हम लोगों ने उसकी स्वीकृति भी दी है।
लेकिन एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम या कहें चमकी बुखार, ये है क्या और किन कारणों से हो सकता है, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने संपर्क किया दिल्ली स्थित एम्स की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट शेफाली गुलाटी से, और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि ये सिंड्रोम है क्या।
बच्चों को बुखार होता है और बुखार के साथ इनकी बेहोशी होती है, कुछ नॉट नेसेसरली बेहोशी, कुछ इरिटेबल होगा शुरू में, उसके बाद अल्टीमेटली बेहोश हो जाते हैं या कभी दौरा पड़ता है, फिर दिमाग में स्वेलिंग वगैरह भी हो जाते हैं जिसकी वजह से और आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत कारणों से हो सकता है, इट कैन बी वायरल इंसेफेलाइटिस हो सकता है, जो बीच में पहले बहुत व्यापी का चल रहा था ना, के बाद वो चंदीपुरा वायरस है, फिर वो निपा वायरस वाला था, और बाकी एंट्रोवायरसेस होते हैं जो पोलियो के जो उसकी फैमिली वाले होते हैं, पोलियो के अलावा जो बाकी एंट्रोवायरसेस हैं उनके साथ भी रिलेटेड आता है। एंडेमिक एरियाज है ना, जैसे कि बिहार है, यूपी का एरिया है, वेस्ट बंगाल के एरिया है, वहाँ पे सारे वो जापानीज भी वाला वो था, लेकिन अब रिसेंटली ये बाकी जो नए वायरसेस और आए हैं। लेकिन इन एडिशन टू वायरसेस इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाय बैक्टीरिया, बाय फंगाई, और एक और है मेनिनजाइटिस और मेनिंगो इंसेफेलाइटिस भी मिक हो सकता है। मतलब मेनिनजाइटिस जो है वो दिमाग की कवरिंग का इन्फेक्शन है, इंसेफेलाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन है। तो बेसिकली ये जो आपको सिंड्रोम आएगा जिसमें बुखार होगा, दौरे पड़ रहे हैं और बेहोश जाना, अल्टीमेटली कोमा में चले जाते हैं जब बहुत ज्यादा होता है, तो ये सारा का सारा एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो कि बहुत सारी इन्फेक्शन से हो सकता है।
व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ये, इसको चमकी बुखार कह रहे हैं, उसको जापानी बुखार कहते हैं, तो जापानी बुखार और चमकी बुखार कैसे अंतर है?
नहीं नहीं, इट्स नथिंग, नहीं, देयर इज नो आंसर, पानी वगैरह कुछ नहीं, इट्स जस्ट दैट सम प्रोपोर्शन ऑफ द एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम कैन बी बिकॉज ऑफ जापानीज भी इंसेफेलाइटिस, जिसको वो शायद जापानीज बोल रहे होंगे बुखार। आप समझ रहे हो, जो एक्यूट इंसेफेलाइटिक सिंड्रोम के बच्चे होते हैं जो ये सिम्टम प्रोफाइल के साथ आते हैं, तो उनको सिम्टोमेटिक केयर देना है। तो पहले होता है इमरजेंसी केयर, एयरवे ब्रीदिंग रेस्पिरेशन, मतलब उसका सांस सही ले रहा है, उसका ब्लड प्रेशर के लिए ग्लूकोज वगैरह सब चल रहा है, ऑक्सीजन देना है, अगर वो बेहोशी हो रही है तो कहीं इंट्यूबेट करके मशीन पे तो नहीं लगाना। और उसके बाद उनको हम लोग एंटीबायोटिक्स भी शुरू करते हैं, जब हमारा बच्चा कैजुअलिटी में आता है ना, एंटीवायरल भी शुरू करते हैं और इमीडिएटली इंजेक्शन वगैरह भी शुरू करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि भैया वो मेनिंगो इंसेफेलाइटिस है कि इंसेफेलाइटिस है, और एंटीवायरल भी देख के बाकी सपोर्टिव केयर देना है। बाकी का कॉज जब तक हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, रीढ़ की हड्डी के पानी की जांच होगी, तो उनकी वेट थोड़ी करते हैं रिपोर्ट की, वो तो टाइम लगता है ना।
और सब लोग बोल रहे हैं कि जैसे रात को खाया, सोई, सुबह उठी तो कंपकपी थी, हम लेके आए और फिर बच्चे नहीं बच्चे, तो क्या इतना कम वक्त होता है इसमें, या मतलब वो डिपेंड करता है कि स्टेज पे आए हैं?
इट इज वेरी वेरिएबल, यू नो, बिकॉज देयर टू फैक्टर्स, एक तो किस ऑर्गेनिज्म ने किया है, ठीक है वो, और दूसरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वो है होस्ट फैक्टर। हमारे ये बच्चे जो ज्यादा इफेक्ट होते हैं ना, वो मेल नरिश्ड है, उनका अपना ही रिजर्व कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो। अब जैसे कोई अच्छा हेल्दी पर्सन है, जैसे आप और मैं, हम ना कुछ खा नहीं रहे कुछ टाइम के लिए, तो हमारा रिजर्व है ना, तो ग्लूकोज वगैरह दिमाग में एकदम से कम नहीं हो जाएगा ना। पर अगर वही कोई मेल नरिश बच्चा है, उसका रिजर्व अपना ही कम है, तो वो कम टाइम में ही उसको कॉम्प्लिकेशन आएगी। और दूसरी बात पता है क्या है कि कई बार ये बच्चे होश कम करते हैं, मतलब कम होता जाता है, पर पेरेंट्स रियलाइज नहीं करते, वो मुंह में ना कुछ डालते रहेंगे पानी या कुछ, तो वो एस्पिरेट कर जाते हैं कई बार ये बच्चे। एस्पिरेट मतलब अगर कोई बच्चा क्यों होश कम हो रही है, ठीक है, तो आप उसके मुंह में घुसा घुसा के नहीं मुंह डालते रहो कुछ, क्योंकि अगर मेरे को, मैं अगर पानी पी रही हूँ, ठीक है, या कुछ खा रही हूँ, तो मेरे होश है तो मैं स्वॉलो कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, तो मेरी वो फूड पाइप में जा रहा है। फूड पाइप और विंड पाइप एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, ये हमारे गले में एडम्स एप्पल वाला जो एरिया है वो तो विंड पाइप है ना, उसी के बिल्कुल पीछे फूड पाइप है। क्या होता है जब बच्चों में होश की कमी होती रहती है, सेंसोरियम डाउन हो रहा है किसी भी कारण से, और इसको फोर्स फीड कर दिया जाए, तो वो क्या है, उसके खाने के पदार्थ ना, खाने की नलकी की जगह अगर सांस की नलकी में हल्का फुल्का भी चले जाए, इट कैन कॉज इंस्टेंटेनियस डेथ।
क्यों जानलेवा बन जाता है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जानकारी दे रही थी एम्स की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट शेफाली गुलाटी।
दिन भर शॉर्टवेव 31 और 25 मीटर बैंड, यानी 9460, 9510, 11795, 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
अब बात बिहार के पड़ोसी प्रदेश पश्चिम बंगाल की, जहां प्रदेश सरकार और डॉक्टरों के बीच जारी तनाव खत्म करने के लिए आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हड़ताली डॉक्टरों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद वो सभी सरकारी अस्पतालों में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाने पर राजी हो गई हैं। लेकिन क्या बीते 7 दिनों से चल रहा ये आंदोलन अब थम जाएगा, ये जानने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की कोलकाता में मौजूद हमारे सहयोगी पीएम तिवारी से।
मरीजों के परिजनों की ओर से जूनियर डॉक्टरों के साथ जो मारपीट हुई थी, उसके बाद बीते 7 दिनों से राज्य तमाम जूनियर डॉक्टर आंदोलन कर रहे थे और हड़ताल पे थे। कई दिनों से चली जोर आजमाइश के बाद आखिर सोमवार शाम को उन्होंने राज्य सचिवालय में ममता बनर्जी के साथ बैठक की और ममता ने उनकी मांगे मान ली थी कि बैठक की लाइव कवरेज होनी चाहिए। इस लिहाज से दो स्थानीय टीवी चैनलों को कवरेज की जिम्मेदारी दी गई। तो ममता ने यहाँ आंदोलनकारियों की तमाम समस्याओं और मांगों को ध्यान से सुना और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिया। बैठक में 14 मेडिकल कॉलेजों के 21 प्रतिनिधियों के अलावा स्वास्थ्य राज्य मंत्री, मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिदेशक सब लोग शामिल थे। ममता ने पूरी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत उनसे काम पर लौटने की अपील की। बैठक के बाद आंदोलनकारियों ने भी इस पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। ममता ने मुख्य जो सुझाव दिए हैं 10 सूत्रीय, उसमें एक है कि डॉक्टरों और मरीजों के परिजनों के बीच तालमेल के लिए एक जनसंपर्क अधिकारी रहे और मरीजों के साथ आने वाले लोगों की तादाद पर अंकुश लगाया जाए, 2 लोगों से ज्यादा को भीतर नहीं जाने दिया जाए, ये इमरजेंसी वार्ड में 2 लोगों से ज्यादा को, और एक गेट लगाया जाए हर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे और पुलिस को भी निर्देश दिया कि एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे जो डॉक्टरों पर हमले और मारपीट की घटनाएं देखेगा। इस मारपीट की घटना में 5 लोग अरेस्ट हुए हैं, इस मामले की जांच चल रही है और उन्होंने कहा हर अस्पताल में एक ग्रीवांस सेल बनाया जाए ताकि मरीज और उसके परिजन कानून हाथ में लेने की बजाय वहां अपनी शिकायत दर्ज करा सके। हड़ताली डॉक्टरों की प्रमुख मांगों में ये थी कि झूठे मामले जो दायर हुए हैं उसे वापस लिया जाए, लेकिन ममता ने भरोसा दिया कि किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कोई मामला दायर नहीं किया गया।
लेकिन आंदोलन वापस कर लिया गया है या कर लिया जाएगा, इस संबंध में अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है?
हाँ, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। जो प्रतिनिधि मंडल आया था जूनियर डॉक्टरों का, उन्होंने कहा कि वे आंदोलन के केंद्र NRS मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाकर बाकी लोगों से बात कर इस बारे में औपचारिक ऐलान करेंगे, लेकिन माना जाता है कि इस पे सहमति बन गई है और देर रात तक आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया जाएगा। डॉक्टरों का काम पर लौटना अब तय है,
जल्द काम पर लौट सकते हैं बंगाल के डॉक्टर। जानकारी दे रहे थे PM तिवारी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की, जो इन दिनों भीषण गर्मी से तो जूझ ही रहा है। पानी की कमी ने भी यहां लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। पानी की तलाश में लोग दूर दूर यहां भटकते हुए मिल जाएंगे। स्थिति ये हो गई है कि कई गांवों से बड़ी संख्या में लोगों का पलायन भी शुरू हो गया है। हमारे सहयोगी समीरात्मज मिश्र ने बुंदेलखंड के इन इलाकों का दौरा किया और वहां से भेजी ये खास रिपोर्ट।
चिलचिलाती धूप और गर्मी में तपकर पत्थर जैसे बन चुके खेत, इन्हीं खेतों में चारा और पानी की आस में दूर दूर तक भटकते मवेशी, सिर पर घड़े रखकर पानी की तलाश में निकली महिलाएं, सूखे हुए जल स्रोत और तमाम घरों पर लटके हुए ताले, सूखे बुंदेलखंड की कहानी और यहाँ के लोगों की जिजीविषा को बताने के लिए पर्याप्त हैं। लंबे समय से लगातार सूखे का सामना करते करते पूरे बुंदेलखंड की जैसे यही पहचान सी हो गई हो। महोबा जिले में सदर तहसील के डड़हत गांव में दोपहर के वक्त एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे कुछ गांव वाले आराम कर रहे थे या फिर ताश खेल रहे थे। गांव के कुछ मकान पक्के भी थे लेकिन ज्यादातर मिट्टी के बने हुए और बेहद साफ सुथरे। पुराने और खंडहर हो चुके मकानों पर तो लटके ताले समझे जा सकते थे, लेकिन बेहद सलीके से संवारे गए मकानों पर लटके ताले हैरान करने वाले थे।
ये ताले क्यों लगे हैं आंटी जी यहाँ पे?
गुम्मा फारन चले गए भाई साहब, जब पानी नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे? हाँ। कोई दिल्ली चला गया, कोई पंजाब चला गया, किसी प्रकार का सही है, रोजगार नहीं है, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है।
तो आप लोग कहाँ से पानी पाते हैं?
पानी दूर दूर से ले आते हैं पीने के लिए, बहुत परेशानी है पानी की।
अच्छा, कितने घर होंगे जो लोग चले गए यहाँ से? बहुत सारे लोग?
हाँ, बहुत सारे, आधा गांव से ज्यादा ही।
आसपास हर गांव में दिक्कत है, पानी है ही नहीं है। पानी बस पिएगा तो ठीक है, लेकिन बाकी खेती लाख पानी नहीं है, कुआन में तो पानी है ही नहीं। हाँ, बस ये नल है, कौन कौन नल बोल भी आए उनमें पानी कौन कौन में दे रहा हूँ तो थोड़ी देर निकल रहा पानी, एक ही बात फिर खत्म हो जाता।
पानी नहीं है, नहीं तो पूरे अपने महोबा जिले में नंबर एक का गाँव है सब्जी पैदा करने वाला।
लगभग पूरा गांव घूमने के बाद यही स्थिति हर तरफ देखने को मिली। यही हाल महोबा में गौरहारी गांव का भी था, जो कि चरखारी तहसील में पड़ता है।
पानी कम है क्या आपके गांव में?
हाँ, कम है, ये नल बहुत गर्म चलता है,
कम चला।
अच्छा,
तारे घानी जो ऊपर सब नल ऐसा जहाँ है, गिलाफ फेरा थे हार में, तो हार में गिलाफ फेरा थे।
आफत आसाब परी पानी की, तो ये पानी है ही नहीं, एक ठिया नल जो लगो है अकेलो, तो पूरा मुहाल समझो कि ये नल में आज दिन भर पूरा खर्च हो रहा है। खेती किसानी को तो ऐसो आके फिर खेती किसानी का कहां से आ जाते जब बारिश ना हुए।
एक बात और है, साहब जैसे गांव में को गुजर जा तो उसको ले जाए वहां जला, सपरे की बहुत परेशानी है।
किसकी?
नहाने की। हाँ, नहाने की बहुत परेशानी। एक छिया नल है वो तो बैरे सपरे के आदमी सपरे।
झांसी जिले में मऊरानीपुर तहसील के गांव परसारा की आबादी 800 की है। गांव में 6 हैंडपंप लगे हैं जिनमें से 5 खराब हैं। सिर्फ एक हैंडपंप से ही सभी लोग पानी भर रहे हैं। दरअसल बुंदेलखंड में पानी का संकट कोई नया नहीं है बल्कि ये सदियों से चला रहा है, लेकिन पहले लोगों ने जल संचयन का उचित प्रबंध किया था जिसकी वजह से जल स्तर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाता था। सूखे के संकट को देखते हुए कुछ साल पहले केंद्र सरकार की ओर से दिए गए बुंदेलखंड पैकेज के तहत इस इलाके में बड़ी संख्या में नए तालाब भी खुदवाए गए थे, लेकिन ज़्यादातर तालाब कागज़ों पर ही बने रहे और जो वास्तविक धरातल पर दिखे भी उनमें किसी ने कभी पानी नहीं देखा सिवाय बरसात के कुछ दिनों को छोड़कर। चित्रकूट बांधा इलाके का पठारी भाग पाठा कहा जाता है और जल संकट यहाँ की सदियों पुरानी पहचान है। मानिकपुर इलाके के गोपीपुर गांव में जब हम पहुँचे उस वक्त दिन के करीब 3 बजने वाले थे।
कहाँ से ला रहे हैं पानी?
बहुत दूर से जात जात तो 2 मीटर बोल जाए।
2 किलोमीटर?
हाँ 2 किलोमीटर।
दोपहर में ही आप लोग लाते हैं क्या पानी? की दोपहर में
पूरी दोपहर ही ना रात ना दिन पानी महाने ना सो पाए ना कुछ कह पाए था। पानी भरत भरत बस फिर खान बनान गद्यारन का खान हो गया। इतनी दिक्कत ही पानी का।
जो टैंकर वाला पानी आया था इससे काम चलता ही नहीं?
यही से नहीं चलता है पानी का। टैंकर ना हो तो आदमी प्यासन मर जाए। 2-3 चक्कर आता है तो बार बार यहाँ नहीं, हम सबको नहीं पूछ पाता पानी यहाँ, तो इसीलिए तो फिर अभी एक बार दे गया है तो नहीं मिला पानी, तो फिर दूसरे चक्कर में हम लोग को दिया। अभी 5-5 बर्तन पानी देते हैं तो पशु भी रखे तो उनको भी पानी चाहिए।
इस इलाके की पेयजल समस्या को दुरुस्त करने के मकसद से 70 के दशक में पाठा पेयजल परियोजना नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की गई थी। मोटी मोटी पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी, उनमें एक तरफ की पाइपलाइन में अभी भी पानी बह रहा है। परियोजना के बारे में हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय पत्रकार आशीष सागर से। आशीष जी, ये कैसे फ्लॉप क्यों हो गई, ये चल क्यों नहीं पाई, इतनी बड़ी परियोजना थी ये?
इंदिरा गांधी के ज़माने में बनी थी। आगे जब आप यहाँ से चित्रकूट की तरफ चलेंगे तो वाल्मीकि और मंदाकिनी नदी के बीच में एक डैम बना हुआ है। उस डैम में पानी रोक करके मंशा ये थी सरकार की कि हम डैम के माध्यम से पानी लिफ्ट करा करके इस चट्टान के ऊपर पानी को लिफ्ट कराना एक तो बहुत बड़ा कठिन काम है। मंदाकिनी नदी में साल के करीबन 6 महीने स्थिति ये होती है कि गाद और सिल्ट के कारण से मंदाकिनी पूरी तरह से मृत्युशैया पर है, और वाल्मीकि नदी उसकी सहायक बरसाती नदी है जो ऊपर विंध्याचल की पहाड़ी के जलस्रोत से निकली है, तो उसमें इतना पानी ही नहीं है।
पानी की समस्या इस इलाके में इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है कि लोग अपने घरों को छोड़कर चले जा रहे हैं। हालांकि अधिकारी पलायन की बात को स्वीकार नहीं करते हैं। बांदा के जिलाधिकारी हीरालाल कहते हैं,
ये बात सही है कि यहाँ वाटर की समस्या है, क्योंकि यहाँ वाटर का टेबल गर्मी में बहुत तेज़ी से नीचे जाता है, तो जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं, हमारे जो नल हैं, वो पानी छोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या और यही मेन कारण है। आज के डेट में हमारे यहाँ कहीं भी पानी पीने की कोई समस्या नहीं है। मेरे पास 52 टैंकर हैं, हमने जनवरी में ही उनको माइन फंड से पैसा देके मरम्मत के लिए दे दिया था और उसकी प्लानिंग कर दी है कि जिससे समय से लोगों को पानी पिया जाए, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है।
बहरहाल ये भी माना जा सकता है कि नौकरी और रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाते हैं और यहाँ से भी लोग गए होंगे, लेकिन बुंदेलखंड के इन गांवों के लोगों के अलावा घरों पर लटके ताले भी ये बता रहे हैं कि उन्हें लगाने वालों को किन परिस्थितियों में रुखसत होना पड़ा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC बुंदेलखंड।
हर सप्ताह आज के दिन हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी राय, जिसमें हम आपके खतों और ईमेल्स के उत्तर देते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से आज हम आपको ये नहीं सुनवा पा रहे हैं। इसके लिए हम अपने सभी श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इसी सप्ताह गुरुवार के कार्यक्रम में आप अपने खतों के जवाब सुन सकते हैं। और अब वक्त है खेल की खबरों का, जिसके लिए हमारे सहयोगी सूर्यांशी पांडे स्टूडियो में हमारे साथ हैं, उनके पास चलें। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विश्व कप क्रिकेट में कल भारत पाकिस्तान के बीच मैच था और डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर भारत ने बड़ी आसानी से ये मैच जीत लिया। इसके बाद कल देर शाम से ही सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की टीम की आलोचना शुरू हुई और ये सिलसिला आज भी थमता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान के क्रिकेट प्रशंसक आज भी टीम के प्रदर्शन से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फाकिर मुनीर ने पाकिस्तान में कुछ फैंस से बात की, आप भी सुनिए।
किसी टीम से हार जाते हमें कोई अफसोस नहीं था। इंडिया से हारना सबसे बड़ी बेगैरती है हमारे लिए। हमें पानी पे डूब के मरना चाहिए, इनको रिटायर होना चाहिए, पूरी टीम को। पाकिस्तान पे दाखला भी इनका बना करना चाहिए।
हमारे शादाब से शादाब इमाद हमारे जो मैच पिने थे, और इनकी न बॉल टर्न हो रही थी, न स्विंग हो रही थी, कुछ भी नहीं। और उनके कुलदीप हैं, चाले देखे किस तरीके से उनकी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहे थे, स्विंग हो रही थी, सीम हो रही थी।
आई बिलीव कि उनको बैट करना चाहिए था पहले, और आई थिंक उनको बहुत लोगों ने एडवाइस भी दी थी, आई हर्ड इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। बट जो भी हुआ, आई थिंक दे रियली नीड टू रिडीम देमसेल्व्स फ्रॉम दिस, बिकॉज इट वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग।
वो लोग जिस चीज का प्लेयर है ना, जो वो एटलीस्ट उसके अंदर सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। हमारे यहाँ पर एक दफा विकेट वो तीन खिलाड़ियों तक जाती है ना, बैट्समैन की बारी ओवर होती है तो फिर विकेट्स डक 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 गिरना शुरू हो जाते हैं।
मैं बहुत ज्यादा डिसहार्ट हुई हूँ, बहुत ज्यादा नाउमीद हुई हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारी टीम को बहुत सीरियसली आइदर हमें या तो इन सबको डिसमिस कर देना चाहिए, न्यू टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, या हमारी टीम को सीरियस हो जाना चाहिए।
वर्ल्ड कप भेजिए ना, ये सारे सेलेक्ट हैं बंदे सिफारशी, ठीक है, ये सबसे बड़ी मेन आ रही है। और सरफराज जो कप्तान है पाकिस्तान का, उसकी टीम में जगह नहीं बनती, उसको कप्तान बनाए हुए।
सरफराज हमारा जो कप्तान है, बस वो उसकी गलती है। जिस टाइम हमारा वो वजीर आजम कह रहे हैं उसे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, उससे क्या जरूरत है कि उन्हें पहले बैटिंग दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमें जो हमारा कप्तान है वो चेंज करे। खिलाड़ी हमारे सारे ठीक थे पर कप्तान ठीक नहीं थे।
हम लोग क्या कर रहे थे फील्डिंग में, और मैं इतनी डिप्रेस्ड हो गई हूँ, मेरा ख्याल है मैं अब कभी भी नहीं देखूंगी मैच।
और अब बात आज के मैच की, जो है वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के बीच, और इसके बारे में और जानकारी के लिए चलते हैं सूर्यांशी पांडे के पास।
और मानसी जी, मुझे लगता है डिप्रेस तो अब बांग्लादेश हो गई होगी, क्योंकि अभी अभी उनका एक विकेट गिरा है, ये आठवां ओवर अभी चल रहा है, दो गेंदें पड़ी थी और आंड्रे रसल ने जो है गेंदबाजी कर रहे थे और सौम्य जो हैं वो आउट हो चुके हैं। 23 गेंदों पे 29 रन उन्होंने बनाए थे और वो आउट हो चुके हैं। तो अभी क्रीज पर तमीम जो हैं वो टिके हुए हैं और उनके साथ अब देखते हैं कि कौन आता है बल्लेबाजी करने। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएँ तो वेस्ट इंडीज़ की बात करें, तो जब टॉस हुआ था तो बांग्लादेश ने टॉस जीता था और गेंदबाजी करने का फैसला किया था, तो वेस्टइंडीज़ ने 321 रनों का टारगेट जो है वो दिया है और 8 विकेट का नुकसान उस समय हुआ था। और देखिए अभी सामने शकीब अल हसन जो है वो अब आ गए हैं मैदान पर कमान संभालने के लिए बांग्लादेश की। और अगर हम बात करें ओवरऑल एनालिसिस की भी, तो मैं आपको बताऊँ कि बांग्लादेश ने मोहम्मद सैफुद्दीन जो गेंदबाज है, उन्होंने पहले ही क्रिस गेल को शून्य पर आउट कर दिया था, तो तब लग रहा था कि बांग्लादेश के हाथ में है ये पूरा का पूरा मैच। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, शाय होप ने होप दी वेस्ट इंडीज़ को और 96 रन यानी कि 96 रन उन्होंने बनाए और 121 गेंदों पर। तो वहीं लुइस ने 70 रन बनाए और पूरन और हिट मायर की जोड़ी ने कमाल कर दिया था वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन उस जोड़ी को तोड़ा फिर 23 ओवर के बाद मुस्तफिजुर रहमान ने, 3 विकेट उन्होंने भी लिए बांग्लादेश के लिए, तो वही 2 विकेट शाकिब अल हसन ने लिए। तो अब देखते हैं कि वेस्टइंडीज़ किस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी करती है, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो निर्भर रहेंगी।
बिल्कुल, और क्रिकेट के अलावा और कुछ खेलों की दुनिया में भी हो रहा है।
बिल्कुल, तीरंदाजी में हुआ है भारत के लिए, भारतीय रिजर्व टीम 14 साल बाद जो है तीरंदाजी में विश्व कप के फाइनल तक पहुंची, लेकिन रविवार को हुए इस मुकाबले में 2-6 से चीन से हारकर रजत पदक जीतना पड़ा।
जी, ताज़ा जानकारी के लिए शुक्रिया सूर्यांशी पांडे। और कार्यक्रम में अब आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
अस्पतालों में डॉक्टरों की बेहतर सुरक्षा की मांग को लेकर देश भर में हजारों डॉक्टर हड़ताल पर हैं, लेकिन देर शाम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और डॉक्टरों के बीच हुई मुलाकात के बाद इसके खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार या मस्तिष्क ज्वर के साथ साथ एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम मामले पर संज्ञान लेते हुए NHRC ने 4 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। नाइजीरिया की आपातकालीन सेवा का कहना है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में हुए अलग अलग आत्मघाती हमलों में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है और 40 लोग घायल हुए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक स्वतंत्र पत्रकार और ब्लॉगर मोहम्मद बिलाल खान पर कुछ लोगों ने हमला किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। BBC समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे 6:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए BBCHindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।